सिद्ध प्रज्ञा। नाउ नेक्स्ट 6 श्लोकों में तीसरे प्रश्न का उत्तर आ रहा है।
जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है।
एग्जाम्पल के साथ बता रहे भगवान, कछुआ का एग्जाम्पल अप्रोप्रिएट है ना, एग्जाम्पल ठीक है ना, एग्जाम्पल अच्छा है, भगवान ने दिया है कि एग्जाम्पल क्या है कि जब कछुआ का, आप लोग पता नहीं आप लोगों ने कछुआ कभी देखा है, कछुआ बंद कछुए को देखा है, उसके सारे अंग अंदर दे देता है, और जब उसको लगता है कि अब कोई संकट नहीं है तो अपने हाथ पांव सब कुछ बाहर निकाल करके फिर से जमीन से थोड़ा ऊंचा हो जाता है ताकि उसके अंग सब वापस बाहर आ जाए और फिर चलना शुरू हो जाए। जैसे ही कोई संकट लगा उसको तुरंत पहले तो बैठ जाता है, फिर धीरे 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 अपने अंगों को अंदर डाल देता है ताकि उसको कुछ न, अर्थात जब आवश्यकता होती है तब अपने अंगों को बाहर निकालता है और जब आवश्यकता नहीं होती तो वापस ले लेता है। ये उसका एग्जाम्पल उसके द्वारा प्रभुपाद भगवान बताते हैं कि वो अपनी चेतना में स्थिर होता है, अर्थात जो स्थित प्रज्ञा होता है वो अपनी चेतना में स्थिर होता है, वो तभी अपने इंद्रियों का व्यवहार भी करता है, रिस्पॉन्ड करता है जब उसको आवश्यकता लगती है। जैसे हनुमान को लगा कि रावण की लंका को जला देना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान का यही आदेश है, तो रावण की लंका को जलाने को तैयार हो गया, लेकिन वही हनुमान हाथ जोड़ के राम के चरण में जाकर बैठ जाते, बाद में प्रभावित नहीं होगा किसी से भी। इसका क्या अर्थ है कि जब भगवान के भक्त को अवसर मिलता है, उचित अवसर, तभी वो रिस्पॉन्ड करता है, प्रतिक्रिया करता है, अन्यथा वो प्रतिक्रिया नहीं करता। जैसे कमेंट देना, स्टेटमेंट देना, ये हर एक छोटी बात में स्टेटमेंट नहीं देता, वो हर एक छोटी बात में कमेंट नहीं करता है, वो उसको जहां उचित लगता है वहीं पर वो करता है। दूसरा एक एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हो, अगर कोई सांप है, वो सांप जो होता है उसको साधारण लोग देखेंगे तो वो भयभीत हो जाता है, और उसका जो कोई स्नेक चार्म में क्या बोलते हैं उसको, सफेरा जो होता है वो उसको वश में कर सकता है और उसके साथ खेलता है, और बच्चे लोग सुनते हैं खेल रहा है सफेरा तो इसको कुछ नहीं हो रहा है, इसको तो काट भी नहीं रहा है, थिंग्स दे थिंग लाइक दैट, लेकिन उसके सांप के जो दांत है वो निकाल लिए, अब कुछ भी कर भैया तुझे जो करना है कर, कुछ नहीं होने वाला उसको, है ना, दांत ही नहीं है क्या करेगा। सो दूर से आपको ऐसा दिखता है कितना दुखी है ये भक्त, कितना इसको कितना कष्ट आ रहा है, कितना दुखी है, लेकिन उसको क्या पता कि वो उसके जो दुख या जो सुख है उसके दांत ही काट लिए, अब उसको कुछ नहीं होने वाला। इट इज ट्रू, इट्स पर्सनल एक्सपीरियंस। ये दोनों हमारे जो प्रसिद्ध उदाहरण है मैं हमेशा आपको बताता हूँ, हिजोलियस देवप्रथा का स्वामी महाराज और हिजोलियस राधा गोविंद महाराज, ये दोनों के उदाहरण कई बार इसको उपयोग करता हूँ। देवप्रथा का हमारे कुछ समय पहले अहमदाबाद आए थे तो आई वॉज विथ हिम फॉर लाइक 2 आवर्स अराउंड, उनके ही कमरे में बैठा था और उनसे अलग अलग विषयों पर चर्चा कर रहे थे। एक्चुअली वो चाहते थे कि मैं उनका फ्लाइट वगैरह सब बुकिंग करूँ, ये करूँ, सो पूरा वो कर रहा था मैं उनका। तो महाराज बात करते थे तो बात करते करते फिर यू शेयर दिस पॉइंट, वो बात करने में ये पॉइंट उन्होंने बताया कि क्यों उनको इतनी सारी कठिनाई आती है शरीर में, फिर भी वो उससे प्रभावित नहीं होते, क्यों ऐसा? ना ही वॉज जस्ट शेयरिंग। सो महाराज जी बता रहे थे थोड़ा डिटेल में, एंड ये उनका पॉइंट यही था, सेम चित्रपट में आत्मा। और राधा गोविंद महाराज से तो कई बार इस विषय में बात हुई है, बॉम्बे में भी हुआ है, सूरत में भी हुआ है, अहमदाबाद, कई बार महाराज के साथ अच्छा आशीर्वाद देते तो बात किया उनसे, तो उन्होंने इसी बात को दोहराया, यू ऑलवेज टॉक अबाउट दिस सिद्ध प्रज्ञा एंड स्थिर होते, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। वाय सांप के दांत काट गए, कट गए, आपको लगेगा कि बेचारे महाराज को कैसे खड़े भी नहीं हो पा रहे, अरे तुम क्या जानते हो उनको क्या हो रहा है, दैट्स द पॉइंट। सो इस तरह से ये उदाहरण जो दिया है, और विशेष करके हमें ये भी समझना चाहिए कि आपको जो इंद्रियां प्राप्त हुई है ना, ये इंद्रियां भगवान ने दी है, और इसका पूरा अधिकार केवल भगवान का ही है, देखने का, सुनने का, हमारा जो भी इंद्रियां है वो भगवान के अधिकार में है, अर्थात उनके लिए उपयोग करने के लिए दिया गया है, खिलौना दिया है खेलो, लेकिन भगवान के द्वारा दिया गया है। सो डोंट ट्राई टू मिसयूज दैट, इफ यू मिसयूज द सेंसेस यू विल बी पनिश्ड। तो इसका आपको हमें दंड भुगतना पड़ेगा। सो दिस इज द प्लेटफॉर्म ऑफ सिद्ध प्रज्ञा। अभी क्यों ऐसा होता है कि उनको किसी चीज से प्रभाव नहीं आता है? टेक्स्ट नंबर 59 वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक का पढ़िए। विषयावधिवर्धन्ते यदा आलस्यते येन रसवर्जं रसोऽप्यस्य सिंपल लॉजिक, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? हमारा निम्न रस, निम्न आकर्षण जब खत्म होगा तो उत्तम आकर्षण अपने आप आएगा, या इन अदर वर्ड्स, जब उत्तम आकर्षण हमारा होगा तो निम्न आकर्षण जो है वो अपने आप चला जाएगा। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, कोई बहुत मुश्किल नहीं। आप वृंदावन में कभी यमुना के तट पे या निधिवन में या आपका कौन सा बाजार, मार्केट, लोही बाजार में आप कभी गए हो और आपने ऐसा उत्तम दृश्य देखा है कि एक बंदर आ रहा है और किसी का चश्मा चुरा करके चला गया, देखा है आपने? या फिर आपके खुद के चश्मा चला गया? हाँ, अच्छा आपके चले गए चश्मा, आपको पहचानता था बंदर? यस, अभी लास्ट टाइम ही मैं वृंदावन में था, यमुना के तट पे, किसी घर के आगे, उससे पहले तो माता जी, मेरे मदर उतरना चाहते थे यमुना के आशीर्वाद में, और हम, मैं तो कार में बैठा था, मैं कहा तुम जाओ जल लेके आओ, मैं कार में था और आसपास में एक भी बंदर नहीं था, और मैंने भी चश्मा पहना हुआ था और मेरी माता जी ने भी चश्मा पहना था, और फिर मैंने कहा देखो यहाँ बंदर बहुत होते हैं, चश्मे निकाल करके जाओ और जब आओगे फिर पहन लेना, अभी नहीं चाहिए। बोले हाँ, मैं चश्मे निकाल, इतनी देर में कहाँ से कौन आया, अचानक से प्रकट हुआ और बंदर चश्मा उठा करके भाग गया, और मेरे मदर स्वाभाविक रूप से ओ मेरा चश्मा स्टार्टेड शाउटिंग, मेरा चश्मा चला गया, तुरंत भाग गया अचानक से, मेरे कुछ नहीं। तो हालांकि भगवान की कृपा होगी, टच वुड मेरे नहीं लिए, तो मैं वहीं पर था, लेकिन फिर आसपास में पूछा क्या उपाय भल, आजकल के बंदर तो फ्रूट ही पीते हैं, ब्रांडेड फ्रूट ही पीते हैं। तो बोले फ्रूट ही ले जाओ, और फ्रूट ही पिएगा तो बंदर मिलेगा। तो इसका अर्थ रसवर्जम रसोप्यस्य निराहारस्य देहि, रसवर्जन रसोप्य से परम दशवा निवर्त, यहाँ पर आप देख सकते। उसको बंदर को, बंदर को चश्मा की डंडी को चबाने से कोई स्वाद नहीं आ रहा है, उससे कोई स्वाद नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही उसको अमृत दिया गया फ्रूटी नाम का, जैसे उसको आप अमृत देते हो तो निम्न रस को फेंक देता है और उत्तम रस को ले लेता है। अच्छा सुधर गए, अच्छा तुम भी इसका उपयोग कर सकते हो, वेरी गुड। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि हमारा निम्न रस किसी और को दान में दे देते, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। सो स्वाभाविक है, बच्चा है, बच्चे के हाथ में अगर 500 की नोट है, आप उसके पास जाओ बेटा लाओ 500 की नोट, है ना, और बच्चा हट पे उतरा है नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा बस, फिर आप क्या करते हो, अभी इसके हाथ से खींच तो नहीं सकते, अगर आप खींचोगे तो आधा उसके पास जाएगा आधा तुम्हारे पास जाएगा, तो किसी काम का नहीं रहेगा। तो फिर आप क्या करोगे, लो बेटा ये आइसक्रीम खाओ, ये दूध पियो, या फिर ये लड्डू खाओ, जैसे उसको लड्डू मिलता है तुरंत आपको आपकी 500 रुपए की नोट दे देता है। क्यों, अच्छी चीज मिलने पर बुरी चीज का त्याग करना ये हमारा स्वभाव है और यही वास्तविकता है। अगर समझ लो कि अगर आपको रोज अशुद्ध किया वनस्पति या डाला गीता आप कुछ खाते हो, हलवा खाते हो, और अचानक से कोई आपको शुद्ध घी दे दे, शुद्ध घी का हलवा दे दे, फिर आपके पास चॉइस है तो क्या आप फिर दूसरी बार उसको छोड़ोगे, जो निम्न प्रकार का क्वालिटी है उसको आप छोड़ोगे कभी, नहीं छोड़ेंगे। तो इसी तरह से जब किसी भक्त को कृष्ण भक्ति का आस्वादन प्राप्त होता है, उसमें से रस प्राप्त होता है, फिर वो निम्न रस को त्याग देगा। आपके अपने जीवन में आप देखना कि कई चीज ऐसी होती है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझसे, मैं इसको छोड़ दूंगा। कुछ लोग होते हैं आदती होते हैं, चाय की आदत होती है कि चाय को कभी छोड़ ही नहीं सकते, सपने में भी नहीं छोड़, सपने में भी दो बार पीते हो, तो ऐसे व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकते। और आज आपको पता भी नहीं पड़ा कि आपने कब उसका त्याग किया, कैसी कितनी सारी ऐसी चीज है कि आपने त्याग कर दी है लेकिन आपको इसका अफसोस नहीं है, आप उसको दुख नहीं है इस बात को जानकर। क्यों, क्योंकि आपको उत्तम रस प्राप्त होता है, परम दृष्टि है। तो इसलिए कई बार कुछ भक्त कृष्ण भक्ति में अगर उनका आचरण अगर कमजोर हो जाता है तो कई बार हम समझ सकते हैं कि क्या समस्या हो रही है, उनको नरिशमेंट नहीं मिल रहा है जैसे अभी। अब समझ लो, या तो आप नॉर्मल फूड खाओगे या प्रसाद खाओगे, लेकिन अगर आप नॉर्मल फूड नहीं खाते हो प्रसाद के लिए लेकिन प्रसाद भी नहीं खाते हो तो आप तो फास्टिंग कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो फिर आप कमजोर हो जाओगे ना, धोबी का कुत्ता है ना घर का ना घाट का, ना कृष्ण भक्ति में भी ढंग से काम किया ना मटेरियल वर्ल्ड में भी ढंग से काम किया, बीच में अटक गया बेचारा। तो मटेरियल वर्ल्ड में इस समय वॉन्ट टू टॉक टू अस, सो बीच में अटक जाता है, निम्न रस निम्न रस से हटना चाहता है लेकिन उत्तम रस मिलता नहीं। कई बार भक्तों का विकास नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि उनको आध्यात्मिक पुष्टि प्राप्त नहीं होती, आध्यात्मिक पोषण, आध्यात्मिक पोषण प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर मुझे भगवान की कथा सुनने का अवसर नहीं मिलेगा, किसी भक्त ऐसे भक्त का संग नहीं होगा कि जो मेरी भक्ति में आगे बढ़ाने में मुझे सहायता करे, अगर मुझे कहीं से भी उत्साह नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मैं कृष्ण भक्ति में से धीरे 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 कमजोर होता जाऊंगा। इट सेम थिंग। सो इसलिए प्रयास ये नहीं करना चाहिए हमें कि मटेरियल वर्ल्ड या जो लोअर टेस्ट है उसको हटाए, प्रयास हमारा होना चाहिए हायर टेस्ट है उसको बढ़ाए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। उदाहरण के रूप में विश्वामित्र तपस्या किया था 60,000 साल तक, लेकिन मेनका का हल्का सा आवाज नुपुर का मन को विचलित कर दिया, हल्का सा छोटा सा आवाज और पूरा खत्म, तपस्या खत्म, सब कुछ खत्म। अभी तो मेनका ने बात नहीं की है, केवल नुपुर की आवाज आई और हमारे हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर के सामने लगातार 3 रात्रि तक कोई मेनका नहीं थी, साक्षात माया देवी, हजारों मेनकाओं की बॉस, साक्षात माया देवी 3 रात तक हरिदास ठाकुर के सामने, और उनको प्रपोज भी किया कि मैं तुम्हारे तुमसे बेटा चाहती हूँ 3 रात तक। और हरिदास ठाकुर क्या कहा उनको, हरिदास ठाकुर कहा कि मेरा चैंटिंग जब तक खत्म नहीं होता तब तक तुम वेट करो, प्रतीक्षा करो। तो पहले दिन कुछ नहीं हुआ, सुबह हो गई, हरिदास ठाकुर ने कहा सॉरी मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सका, तुम आज रात आ जाना फिर से, आज रात मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। दूसरी बार आए, फिर तीसरी बार आए, तीसरे दिन तो वो भी हरिदास ठाकुर के साथ हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहता, और 3 रात्रि के पश्चात हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं तो 3 दिन पहले ही ये स्थान छोड़ के चले जाने वाला था, किंतु मुझे तुम पर दया आई इसलिए मैंने 3 दिन तक केवल तुम्हारे लिए मैं इधर रहा, और आज तुम हरे कृष्ण मंत्र का माला का जप कर रहे हो, तुम्हें मैं दीक्षा देता हूँ। हरिदास ठाकुर ने माया देवी को दीक्षा भी दे दी, दीक्षा दिया और फिर वहां से चले गया। क्यों? उत्तम रस हरिदास ठाकुर के पास था, ये तुच्छ रस का क्या है? इसलिए आप हरिदास ठाकुर जैसा मत करना, ऐसा गलती नहीं करना, क्योंकि हरिदास ठाकुर ही कर सकते ऐसा काम, माया के सामने हमें एक झापड़ पड़ेगी गिर जाएंगे। तो इसलिए ये है उत्तम रस कृष्ण भक्ति का, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। सो नाउ टेक्स्ट नंबर कौन सा है, 60, यस पढ़िए। सो देखो यहाँ पर क्या कहा है कि इंद्रियां बहुत बलवान होती हैं, बहुत। अगर अर्जुन तुम ये सोचते हो कि तुम युद्ध नहीं करके चले जाओगे वन में, तो ये नहीं सोचना कि तुम सफल हो पाओगे, इंद्रियां बड़ी बलवान होती है। वो ज्ञानवान व्यक्ति जो होता है, द मैन विद द डिस्क्रिमिनेशन, ज्ञानी व्यक्ति जो होता है उसको, उसके मन को भी हर लेता है। डोंट ट्राई टू गिव अप वर्क, यू कंटिन्यू वर्क। अगर आप अपने कार्य को त्याग करके निरंतर मन में या कर्म से मुक्त होने का प्रयास करोगे, तो जैसा हमने पहले चर्चा किया था, आई विल एम्प्टी माइंड देयर्स वर्कशॉप, यू नो वो गुजराती में बोलते हैं ना कहावत है नवरा बैठा ना खुदवार, आपके पास कुछ करने के लिए कुछ नहीं है, जस्ट हैव नथिंग टू डू, देन यू स्टार्ट मेकिंग डिस्टर्बेंस। आप समस्या खड़ी कर देते हैं। इसलिए ऑलवेज रिमेन एंगेज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये है मटेरियल वर्ल्ड और भक्ति योगी और ज्ञानियों का तफावत। ज्ञानियों के पास क्या होता है कि उनके लिए कर्म करने से कर्म करने का कुछ होता नहीं, इसलिए उनका मन विचलित हो जाता है। लेकिन भक्त निरंतर सेवा में लगे होते हैं, इसलिए उनका मन विचलित नहीं होता। समझ लो कि आपको भोग लगाना नहीं है, रसोई करना नहीं है, धन कमाना नहीं है, कोई कार्य शेष है ही नहीं करने के लिए, प्रचार नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, शरीर का उपयोग नहीं करना है, तो फिर आप क्या करोगे? आप माया से आकर्षित हो जाओगे। लेकिन भक्तों के पास क्या फैसिलिटी है? वो पूर्ण रूप से एक्टिव रह सकता है कृष्ण भावनामृत में। एक भक्त था वृंदावन में, गुरुकुल में टीचर था वो भक्त। उसको क्या हुआ कि अचानक से किसी लोकल बाबा जी का संपर्क हो गया। वृंदावन में बहुत प्रॉब्लम है, वृंदावन में हमारे जो भक्त होते हैं इस्कॉन के, तो कुछ ऐसे बाबा जी लोग होते हैं जिनके प्रभाव से वो लोग सब कुछ छोड़ छाड़ करके चले जाते हैं राधाकुंड रहने के लिए। राधाकुंड जाएंगे, गोवर्धन जाएंगे और फिर वो बाबा जी के साथ रहेंगे, सब कुछ त्याग देंगे। अचानक से परमहंस बन जाएगा। कल तक तो वो सब प्रकार का आकर्षण था मटेरियल पर भी, और अचानक से परमहंस बन जाता। तो एक ऐसा भक्त था, भाग गया। ऐसे तो कई भक्त हैं मेरे सफर कॉलेज में कि भाग गए, कभी वापिस नहीं आए। कुछ भक्त भाग गए फिर वापिस भी आ गए, वहाँ मजा नहीं आया कुछ, तो वापिस भी आ गए। और कुछ एक ऐसा एक भक्त था, काफी समय दूर गया फिर वापिस आया। तो जो भक्त उसको जानता था उसने उसको पूछा क्या हुआ? तो उसने कहा तुम जानते हो मैं क्यों आया हूँ? तो बोले वो कौन नहीं जानता, बोले तुम्हें टाइम मैगजीन पढ़े बिना चैन कहा? अर्थात वो कहने का तात्पर्य था कि तुम्हारा मन जो है वो इच्छाओं से भरा पड़ा है, और तुम भाग करके बाबा जी बनेगा तो वापिस ही आएगा ना, वानता से बनेगा, है ना, हिमालय जाएगा, हिमालय से वापिस आ जाएगा। क्यों आएगा वापिस? क्योंकि संतोष नहीं मिल रहा है, एक्टिविटी नहीं है। देयर इज नो एक्टिविटी व्हेन यू आर नॉट एक्टिव। इसलिए हम कई बार आप लोग सुना होगा भक्तों को कहते हैं कि आप एक्टिव रहो कृष्ण भक्ति में, एक्टिव रहो। जैसे मंदिर है तो मंदिर में एक्टिव रहो, प्रीचिंग करो, सेवा करो, जो भी आपकी क्षमता है, लेकिन एक्टिव रहो। अगर आप एक महीने तक अगर आप भक्तों के संपर्क में नहीं है तो भक्तों को चिंता हो जाती है ना, काम क्या हो गया इसको, नहीं ऐसा जाना नहीं, नहीं है ना, ऐसा सोचते हैं कि क्या हो गया इसको, क्यों नहीं आया मंदिर, वाई इज नॉट एक्टिव? बिकॉज ही नोस व्हेन इज नॉट एक्टिव इट्स अलार्मिंग, इज नॉट एक्टिव इज अलार्मिंग। तुरंत उसके घर पहुंचना पड़ेगा, सर हाउ आर यू, इट्स रिक्वायर्ड। सो प्रभुपाद कहते हैं कि इनके वेरी गुड एग्जाम्पल अकॉर्डिंग इसके रिगार्डिंग में यदवती यमुनाचार्य का श्लोक सुना आपने? यमुनाचार्य कहते हैं कि जब से मुझे कृष्ण के चरण कमलों के प्रति मेरा आकर्षण हुआ है, मेरी भक्ति उनमें स्थिर हुई है, मन स्थिर हुआ है, तब से कभी भी इंद्रिय तृप्ति का विचार भी अगर आता है तो उस विचार पर मैं थूक देता हूँ। जब भी मुझे सेक्स डिजायर का इच्छा होता है उस विचार को मैं थूक देता हूँ। क्यों? क्योंकि अब मुझे कृष्ण अमृत दे रहे हैं तो मैं ऐसी निम्न वस्तु के पीछे नहीं भागूंगा। तो यद अवधि मम चेत कृष्ण पदार विंदे, और ये नव नव नित्य नव नव वैरायटी फुल ऑफ वैरायटी। प्रभुपाद से कृष्ण भावनामृत जो है वो फुल ऑफ वैरायटी है। पुनः मटेरियल वर्ल्ड में सब कुछ पुनः पुनः स्टर्वित चरोना नाम रिपीटेड स्टीरियो टाइप होता है मटेरियल वर्ल्ड में। नो कैसा होता है कि कोई नई चीज कुछ नहीं है मटेरियल वर्ल्ड में, लेकिन कृष्ण भावनामृत में एवरीथिंग इज एवर फ्रेश। इफ यू एंगेज इन कृष्ण सर्विस यू विल फाइंड ग्रेट एनकरेजमेंट, बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, वो आध्यात्मिक है। बट इफ यू फाइंड हैकनेज, यू नो हैकनेज अगर आपको कुछ आपको रिपीटेड ऐसे आपको बोर हो रहे हो ना कृष्ण भक्ति में, अगर आप कृष्ण भक्ति में बोर हो रहे हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप आध्यात्मिक स्तर पे कार्य नहीं कर रहे हो, आप भौतिक स्तर पर कार्य कर रहे हो, इसलिए बोर हो रहे हो। भले कार्य आप सेवा के नाम से कर रहे हो लेकिन कार्य आप भौतिक कर रहे हो, आध्यात्मिक कार्य नहीं कर रहे हो, इसलिए बोर हो रहे हो कृष्ण भावना में। या आपको इसे मोनोटोनस लगता है रेगुलर, वही सुबह 4:30 बजे उठ के मंगल आरती करना, भक्तों का संग करना, वही रिपीटेड लाइफ स्टाइल, एक का एक, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, क्योंकि आप भौतिक स्तर पर कर रहे हो, स्पिरिचुअल लेवल पर नहीं हो रहा है। बट इफ यू फील न्यू एनर्जी देन यू आर परसर्विंग स्पिरिचुअल, दैट इज द टेस्ट, ये आपकी कसौटी। सो लाइक दिस Prabhupada is giving good example on this. Now, इसके connection में भगवान कहते हैं आगे इसी question के answer में, this is the third question we are discussing, right? तीसरा, okay, text number 61. ये श्लोक में थर्ड क्वेश्चन है हमारा, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन तो बताया ही नहीं था। हाँ बट आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू द क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन को भी सुन लीजिए। मैं वही सोच रहा हूँ कि हम थर्ड क्वेश्चन में पहुंच गए, क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन क्या था? यस 58 से 63, मैंने बताया था आपको कि 6 श्लोक है तीसरे प्रश्न के उत्तर में 58 से शुरू होकर के, लेकिन अभी हमने 3 श्लोक की चर्चा की 58, 59, 60, इसके अलावा अभी 3 श्लोक और है इसी के अंदर। तो कौन सा है ये प्रश्न है? ये प्रश्न है हाउ डज ही नॉट एंगेज हिज सेंसेस, अर्थात वो अपनी इंद्रियों को, उसके शब्दों में इस बेटर वे, उस सिद्ध प्रज्ञ व्यक्ति या भक्त का जब इंद्रियां, उनकी इंद्रियां विषयों से विड्रॉ कर ली जाती है, आंखों से मटेरियल चीज को देखता नहीं है, कान से मटेरियल वस्तु को सुनता नहीं है, अर्थात वो अपने अपने विषयों से वापिस ले लेते हैं, रिस्ट्रेन कर लेते हैं, विड्रॉ करते हैं, अपनी इंद्रियों को विषयों से वापिस लेते हैं या उसको रोक लेते हैं, उस समय उसकी मेंटेलिटी कैसी होती है? समझे वॉइस ऑफ क्वेश्चन, कि जब इंद्रियों को विषयों से वो रोक लेते हैं तो उस समय उसकी मेंटेलिटी कैसी होती है, अर्थात वो क्यों अपनी इंद्रियों को विषयों में लगाता नहीं है, जोड़ता नहीं है, आसक्त नहीं करता? हाँ नहीं, प्रश्न क्या है वही हम पूछ रहे हैं, इस द क्वेश्चन। इज देयर एनी प्रॉब्लम विद अंडरस्टैंडिंग? ये प्रश्न नहीं समझे ऐसा कुछ है? एक भी भक्त तो प्रश्न नहीं समझ पाए? हाँ, इंद्रिय संयम प्रॉब्लम, अगर समझ लो कि आप मुंह से, मैंने आप ऐसा बताया कि मैं मुख से कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोलता, ठीक है, आप नहीं बोलते तो फिर क्या करते हो आप मुंह से? अर्थात अगर आप नहीं, ऐसा क्या है कि आप मुख से कुछ कृष्ण भक्ति के अलावा कुछ बोलते नहीं, ऐसा क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? कि आप टीवी नहीं देखते, आप जुआ नहीं खेलते, आप कोई भौतिक निंदनीय कोई कार्य करते हैं, क्यों ऐसा? मैं आपको आंसर नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो केवल प्रश्न बता रहा हूं। ये प्रश्न क्या है ये हम चर्चा करें, आंसर तो कौन दे रहा है? भगवान स्वयं दे रहे हैं। 58, 59, 60 और आगे वाले 3 श्लोक और जिसमें आपने हमने चर्चा किया, परम दृष्टवा निवर्तते, उसमें चर्चा किया हमने, क्योंकि उनके पास हायर टेस्ट है भाई। सो नाउ इन कनेक्शन विद दिस, किस तरह से वो अपने इंद्रियों को, फिर वो क्या करता है अगर लगाता नहीं तो फिर क्या करता है अपने इंद्रियों को? निरंतर कृष्ण भावना रूप में बनाता है। यस, या सेकंड लास्ट, व्हाट इज द सेकंड लास्ट?
हाउ डज इट वॉक सीट, हाउ डज इट स्पीक्स,
नाउ इन द सीक्वेंस,
व्हाट डज इट स्पीक, व्हाट डज इट वॉक,
आई थिंक हाउ डज इट सीट,
हाउ डज
right, second last, last is walk, and the second last is sit. So how does he sit? That means where does he engage his senses, or if he just, what is his mentality when he restrain his senses from the objects? So this is the question. तो इसके अनुवाद में भगवान ने ये सारे उत्तर दिए। नाउ भगवान ने इस श्लोक में पहली बार ऐसा कहा है मत्पर, मत्पर का अर्थ होता है मुझ में, पहली बार, अर्थात इन रिलेशनशिप विच मी, भक्ति योग की चर्चा हुई पहली बार। So, यहां पर मत पर शब्द का स्पष्ट अर्थ यही है कि सभी इंद्रियों को मुझ में लगाता है कृष्ण भावना, इसलिए उसको कुछ नहीं होता। क्यों? परम दृष्टवा निवर्तते, उसको हायर टेस्ट प्राप्त हो रहा है किसके माध्यम से? मेरे माध्यम से, मत पर, मेरे परायण है वो, इसलिए उनकी चेतना स्थिर है, प्रतिष्ठित। उस व्यक्ति को स्टेडी इंटेलिजेंट वाला व्यक्ति माना जाता है। यहां पर उसकी इंद्रियां जो है, पहला द फर्स्ट लाइन, यस, इस श्लोक का जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट हाफ, वो क्या है? वन हु रिस्ट्रेन हिज सेंसेस कीपिंग देम अंडर फुल कंट्रोल, ये हुआ पहला भाग। और ये दूसरा है फिक्सिस इज कॉन्सियसनेस अपॉन मी, ये दूसरा भाग। इस श्लोक को आप दो भाग में बांट सकते हो, पहला भाग और दूसरा भाग। पहला जो भाग है इस श्लोक का वो साधकों के लिए है, और दूसरा जो भाग है वो सिद्ध पुरुषों का वर्णन कर रहा है। पहले इंद्रियों की बात हुई, बाद में भगवान ने चेतना की बात की। चेतना सीधी स्थिर है मेरे में, चेतना स्थिर कब होती है? जब आप इंद्रियों को लगाते हो कृष्ण भावना में। जैसे आप रोज सुबह मंगला आरती करते हो, रोज सुबह चैंटिंग करते हो, अपनी इंद्रियों से आप पूरा सेवा करते हो भगवान की नवदा भक्ति के माध्यम से, तो फिर धीरे 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 हमारी जो चेतना है वो क्या होगी, कृष्ण भक्ति में स्थिर हो जाएगी। तो ये सेकंड पार्ट तब आता है, पहला पार्ट है साधकों का और दूसरा पार्ट है सिद्ध व्यक्ति का। तो इसलिए इंद्रियों को किस तरह से उपयोग करना है, अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल, राइट, अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल आपको पता है, वो क्या करते थे, अपने मन सवई मन कृष्ण पता, अपने मन का उपयोग करते थे कृष्ण का चिंतन करने, अपनी वाचा से वैकुंठ गुणानुवर्णन, वाणी का उपयोग करते थे भगवान का वैकुंठ का गुणगान गाने के लिए, फिर हाथ से मंदिर साफ करते थे, पांव से वो धाम की यात्रा करते थे, बोलते ना व्रज, व्रज का अर्थ था चलना, माम एकम सनम व्रज, व्रज चलो वॉक, देयर इज वॉकिंग व्रज, वहां पर गाड़ी लेकर नहीं जाना चाहिए, पैदल चल के जाना चाहिए। वेल देन अपनी मस्तक को भगवान के चरणों में नमस्कार प्रणाम करने के लिए, फिर नाक को अर्पित फूल सूंघने के लिए, कान से भगवान का गुणगान गाने के लिए, जीव से तुलसी पत्ता भगवान को ऑफर किया उसको चखने के लिए, और मन को इच्छाओं को अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं लेकिन भगवान की इच्छाओं को पूर्ति, कामम तो दास्य न तो काम काम गया, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए नहीं भगवान की इच्छा। ये कौन कर रहा था, अम्बरीश महाराज पूरे पृथ्वी के राजा थे, ऐसा कि रशिया के थे या अमेरिका थे कि इंडिया के थे, पूरे पृथ्वी के राजा थे, इसलिए फिर भी वो ऐसा कर रहे थे। अन्यथा अगर आप इंद्रियों को भगवान के शरणों में नहीं लगाओगे तो बहुत समस्या आती है, क्यों, मुश्किल है, ये माया को जीतना बड़ा मुश्किल है। नाउ वी जस्ट टॉक द लास्ट टू श्लोकस इन दिस सेक्शन एंड देन वी स्टॉप हियर, दिस इज आल्सो गुड श्लोक, पढ़िए, ध्यायतो विषयान, दूसरा दूसरा आगे वाला
उससे पूर्ण मोह होता है और मोह से स्वर्ण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, जब स्वर्ण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य मोह के पूर्ण मिल जाता है।
देखा आपने सीरीज ध्याय तो विषया पुनसर संगस्तेषु भजायते, संगा संजायते कामान कामा क्रोधो विजाय क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमात् स्मृति भ्रमशात् बुद्धिनाशात् बुद्धिनाशात् पुनश्यति। ये पूरा श्रृंखला है, इसको आप कई तरह के, जैसे आप इसको समझ लो कि किसी ने किसी वस्तु का ध्यान करता है पहले, और ध्यान करता है तो फिर उसका संग होने लगता है, और संग फिर उसको इच्छा प्रस्तुत प्रकट करता है कामना, और काम पूरा नहीं होता है तब क्रोध में परिवर्तित होता है। जनरली अगर आप समझ लो कि आपने रास्ते पर एक अपने वॉल्वो कार देखा, या फिर आपने टेस्ला देखा, फेरारी देखा, आपने वो गाड़ी देखा, वो गाड़ी देख रहे थे आप पड़ोसी का, अच्छा लगा, वेरी नाइस, फिर उसका मन में चिंतन कर रहे थे आप, वाह क्या स्टाइल से घूमता है, कितना अच्छा स्लिक बॉडी है उसका, और फिर वो सोचता है, फिर वो सोचता है कि पहिए देखे, पहिए बड़े पहिए इसे नाइस, फिर मित्र को बताता है, अपने फ्रेंड को बताता है, अरे आज क्या गाड़ी देखा था मैंने, बढ़िया गाड़ी था, ऐसा था वैसा था, ये था वो था, फिर ऐसे बताता है, फिर दूसरे दिन भी वो सोचता है, तीसरे दिन भी उसका गाड़ी का संग करता रहता है, और फिर ध्यान संगस्त संगा सज्जाए थे कामा, अब फिर काम क्या इच्छा हुआ, ये तो मेरे पास होना ही चाहिए। कई बार ऐसा होता है किसी लड़के को देखता है या किसी लड़के को देखता है, बस सोचता रहता है, बाद में उसका संग कर लेता है, रात को सोचता है, दिन में देखता है, फोटो देखता रहता है, उसका मैसेज पढ़ता रहता है, फिर क्या होगा, संगा समझाते काम, अब तो मुझे ये व्यक्ति चाहिए ही, लेकिन भाई तुम्हारा बैंक बैलेंस है नहीं, तुम गाड़ी कैसे खरीदोगे, हाउ विल यू परचेज द कार, तुम्हारे पास तो है नहीं इतना। तो फिर कामात क्रोध हो भी जाते, उससे फिर आप क्रोध, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरी इच्छा पूरी नहीं, धैन क्रोध, क्रोध में फिर रद हो जाए सम्मोहा, तो मोहित हो जाता है, उसको पता नहीं पता क्या कर रहा है, नहीं जो नहीं है उसको सच मान लेता है, सम्मोहा स्मृति चली जाती है। भाई तुम किसी के बेटे हो, किसी के भाई हो, किसी के पति हो, तुम एक सज्जन व्यक्ति हो, सब कुछ भूल जाता है, किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, यू डोंट नो, क्रोध में है ना, क्रोध में हो जाता है, आप किसके सामने बोल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, आपको ये शोभा देता है, कुछ नहीं, क्रोधा बहुत सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति चली जाती है, स्मृति भ्रमशात बुद्धि नाश, जैसे स्मृति खत्म हो गई तो बुद्धि का नाश हो जाता है, अच्छा क्या और बुरा क्या ये कुछ पता नहीं रहता बाद में, वो क्या कर बैठता है, किसी को बहुत बड़ा नुकसान लगा देता है, किसी का अपमान कर बैठता है, कई बार ऐसे घाव जो होते हैं भरे नहीं जा सकते, क्रोध बहुत भयानक वस्तु है, क्रोध में किसी का हत्या कर दिया किसी ने, क्या होगा, गया काम से, जरूर क्रोधात बहुत समझ सुन बुद्धि नाशात प्राश्चर्य, विनाश हो जाता है उस व्यक्ति का, विशेष करके इंद्रिय तृप्ति में ये ऐसा ही होता है संसार में, या कोई प्रॉपर एग्जाम्पल दिए थे स्त्री का शरीर, तो स्त्री के शरीर के लिए लोग बहुत ही लालायित रहते हैं, यही एक आकर्षण है संसार में, जिसके कारण वो लोग जीवन जी सकते हैं, जैसे ये निकाल लोगे उनकी लाइफ में से, बोले क्या करता है ये, उसका जीवन खत्म हो गया। तो प्रॉपर कहते हैं एग्जाम्पल में कि उसके शरीर जो है, पुरुष का शरीर स्त्री का शरीर, चमड़ी का लेयर हटाओ तो क्या दिखेगा, वही हड्डी पस ब्लड मांस वही सब दिखेगा ना, और क्या दिखेगा, तो इसलिए हमारी इल्यूजरी इंद्रियों के कारण हम ऐसी चीज को अट्रैक्ट देखते हैं, लेकिन वो मिराज, सुना है मिराज वाटर, रेगिस्तान में या हाईवे पर आपको कभी पानी दिखाई दे रहा है, होता नहीं हो, इस तरह से हमें जहां सुख दिख रहा है वहां सुख होता नहीं है, लेकिन हम वहां पर भागते रहते हैं उसके पीछे पीछे, और फिर यही साइकिल में घूमते रहते हैं, क्या है तो विषयान को संघर्ष चुप जाते, इसी के अंदर हम घूमते रहते हैं, और परिणाम यह आता है कि हम मतपरायण नहीं होते, जो मतपरायण थे ना भगवान पिछले श्लोक में होता है, लेकिन हम सीधे इंद्रियों के परायण हो जाते हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। तो इसलिए भगवान की सुंदरता देखोगे फिर पुरुष या स्त्री की सुंदरता में कहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको। रुक्मणी कृष्ण की पत्नी, कृष्ण को लेटर लिखा था और लेटर में रुक्मणी लिखा था, बोले एक बार जिसने आपको दर्शन किया हो वो कौन बदसूरत पुरुष के साथ शादी करने का सोचेगा भी, सीमेंट से कि कृष्ण से अधिक सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, तो फिर और जिसके के पास तो जा ही नहीं सकता, वो कृष्ण के पास ही जाएगा, कृष्ण की सुंदरता के सामने मटेरियल वर्ल्ड का अट्रैक्शन बेकार, यूजलेस। सो इस तरह से मनुष्य जो है वो इंद्रियों के सामने परास्त हो जाता है। सो नेक्स्ट श्लोक जो है आने वाले, उसमें भगवान चौथे प्रश्न का उत्तर अर्जुन का देने वाले, प्रश्न क्या है वो सुन लीजिए, फिर आंसर संडे को सुनेंगे। प्रश्न है कि किस तरह से वो मनुष्य अपने इंद्रियों को आध्यात्मिक कार्य में लगाता है। ये प्रश्न है। ओके सो वी स्टॉप हियर। हाउ डज ही वॉक?